फिर इसके बाद देखिए अगली आयत 179 में एक और टॉपिक है, आयत को पढ़ेंगे फिर उसको देखेंगे। फरमाया मा कान अल्लाहु लियज़रुल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، یعنی اللہ ایسا بھی نہیں کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر دیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بھاری اجر ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط ہے، اور وہ کیا؟ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ کفار کو جو مال دولت عیش کے سامان ملے ہیں تو مت سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اب اس آیت میں 179 میں اس کا اپوزٹ ہے کہ بعض دفعہ سچے مومن کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، تو یہ کیوں آتی ہیں؟ جس طرح لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ کافر کے پاس دنیا بہت ہے تو اس کا تو اللہ ان سے راضی ہے، اسی طرح ایک دوسری غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جن کو دین کے باوجود آزمائشیں آ رہی ہیں، مشکلات ہیں، تو اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ اللہ ان سے ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے۔ تو پھر سوچ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ یہاں آزمائشوں کا ایک نظریہ بتا دیا، حقیقت بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس بات پہ ہے کہ دیکھے کہ لوگ کب کہاں کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ احد کے میدان میں چند گھنٹے میں پتہ چل گیا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، کیونکہ تھوڑے تھے نا منافق اس دور میں۔ آج کے دور میں مسلمانوں پر اتنی جنگیں مسلط ہیں، اتنے فتنے ہیں، یہ اصل میں اس بات کی جانچ ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں کی عہد اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ آج زیادہ ہیں، چھانٹی ہو رہی ہے، اللہ ہر موقع پہ دیکھ رہا ہے کہ کون کہا ہے۔ نہ نفاق کا پتہ نماز سے چلتا ہے، اور نہ روزے اور نہ حج سے چلتا ہے۔ لوگ نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اس سے نفاق نہیں کھلتا، لیکن نفاق کا پتہ چلتا ہے جب قربانیوں کا موقع آتا ہے، جب دین کے لیے جد و جہد کا وقت آتا ہے، جب اپنی ذاتی زندگی کے فائدے چھوڑ کر اجتماعی زندگی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جب اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اللہ کے دین کے فائدے عزیز ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان اپنی ذات کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو کوئی اچھا کہے یا برا کہے وہ مائنڈ نہیں کرتا، برا نہیں مان جاتا، چھوڑو نہیں تو نہ صحیح، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کیسا معاملہ ہے۔ یہاں ان آیات میں یہی بات بتا دی کہ جنگ، جہاد، مشکلات اور آزمائشیں یہ نفاق کو کھولنے والے ٹولز ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کیوں جنگیں لگی ہوئی ہیں، کیوں ہر تھوڑی دیر بعد قربانی کا موقع آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہر دور کے مومنوں اور منافقوں کو چھانٹنا چاہتا ہے۔ جیسے سلیکشن ہوتی ہے نا، اس کو ادھر ڈال دو، اس کو ادھر ڈال دو، اس کو ادھر ڈال دو، اس کو ادھر ڈال دو۔ اب دیکھیے یہ پاسیبل تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چند منافقوں کے نام بتا دیتا جنہوں نے یہ نفاق کیا۔ قرآن پاک کے شروع یا آخر میں ان کی لسٹ ہوتی، حدیثوں میں چلے ہو جاتی، صاف پتہ ہوتا ان کے نام ہوتے اور ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ منافقوں کے نام بتانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامات بتائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بتائیں، جیسے ایک بڑی معروف روایت ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، وعدہ کرے تو خلاف کر دے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے وغیرہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہم نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کے آخر تک کتنی صفات پڑھی، دھوکے باز، فسادی۔ یہ کیوں؟ یعنی منافقوں کے نام بتانے کی بجائے ان کی علامتیں اور ان کی نشانیاں کیوں بتائیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچ لیں کہ منافق بس وہی تھے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھے، اور خود کو فارغ کر لیں۔ تھا عبداللہ بن ابی منافق، آج تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو نام آئے ہوئے اور تو کسی کا نام ہی نہیں۔ ठीक है। और दूसरी बात है कि क़यामत तक आने वाले लोग ख़ुद को इन निशानियों के ऊपर परख लें कि हम कहाँ खड़े हैं। और अल्लाह ताला ने हर दिल के अंदर एक क्राइटेरियन रखा हुआ है, एक बैरोमीटर कह लें, थर्मामीटर कह लें, टेम्परेचर नोट करने वाले जैसे आले होते हैं, वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं ना, इसी तरह हर बंदे के अपने दिल के अंदर एक ऐसा इंडिकेटर लगा हुआ है जो उसको खुद ही बता देता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले निफाक का बंदे को खुद पता चलता है, फरिश्तों को भी पता लगने से पहले बंदे को खुद पता चलता है। फरिश्तों को कब पता चलता होगा? जब वो बंदा निफाक की वजह से मुनाफिकाना काम करता है। लेकिन जब हम खुद गलत काम कर रहे होते हैं, अभी कर भी नहीं रहे होते, अभी एक गलत सोच ही आ रही होती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, जो काम भी इस दुनिया में हो रहे हैं, मुसलमानों पे आजमाइशें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, ये इसलिए कि अल्लाह मुश्किलात पैदा करके देखना चाहता है कि कौन लोग हैं जो अमली तौर पे निफाक का शिकार हुए हुए हैं और कौन लोग हैं कि जिनके दिल ही खोटे हो चुके हैं। हर दौर तक ये होता रहेगा, क़यामत तक यही क्राइटेरियन है। जब कोई इस्लाम पे फितना आया, जब कोई आजमाइश आई आलमी सतह पे, मुल्की सतह पे, तब लोग छटे, लोग छटते हैं, अल्लाह छांटी करता है। अब देखिए कि जैसे हम लोग भी कभी कोई दाल चावल साफ करते होंगे ना, तो छांटी होती है, पहले लेवल पे हम मोटा मोटी सफाई कर लेंगे, फिर किसी और को दें। चलिए मैं एक छोटी सी और मिसाल दे देती हूँ। बस दफ़ा आप देखिए कि कुछ लोगों को कोई तहरीर लिखने को दी जाती है, आप लिखें, आप टाइप करके दे देते हैं, लिखने वाला कहते हैं मैंने बिल्कुल ठीक लिखा, बात हो गई। फिर आप उसको कहते हैं ज़रा आप इसको रीचेक कर दें, दूसरा बंदा उसको पढ़ता है, उसमें 10-15 गलतियाँ निकलेंगी, वो फीडबैक आता है, उसको जाके ठीक करवा दिया जाता है, उसको दोबारा तीसरे बंदे को दिया जाता है, अब आप रीचेक करें, वो उसमें फिर गलतियाँ निकालेगा। यानी जितनी बारीक नज़रों से देखेंगे उतनी गलतियाँ निकलती आती हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला चाहते हैं कि एक ईमान वाला जब मेरे पास आए तो गलतियों से पाक हो, फुली रिवाइज्ड एडिशन आए। बंदे मोमिन के अंदर बाहर एक किरदार में, अखलाक में कहीं कोई धब्बा ना हो। इसलिए फिर दुनिया में उनके ऊपर मुश्किलात आती रहती हैं, आती रहती हैं, कभी बातों की सूरत में, कभी उनके ऊपर जंगों की सूरत में, कभी सैलाबों की सूरत में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं मत सोचो कि ये अल्लाह का इंतकाम है, बल्कि मा कान अल्लाहु लियज़रुल मोमिनीन, अल्लाह ऐसा तो नहीं है, यानी अल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोड़ दे मोमिनों को। किस बात पे? अला मा अंतुम, उस पे जिस पे तुम हो, मुराद क्या कि जो हालात है, जो कह दिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। सूरत अनकबूत की पहली आयत में भी आता है ना कि हसीबन नास अई युतरकू अई यकूलू आमन्ना बिल्लाहि वहुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने ये सोचा कि वो सिर्फ ये कहने पे छोड़ दिए जाएंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे? तो ईमान और आजमाइश का चोली दामन का साथ है, गहरा साथ है, अल्लाह देखना चाहता है। क्या देखता है? हत्ता यमीज़ अल खबीस मिन तैयब, कहाँ पाक करे। यमीज़ का लफ्ज़ वही है जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना तमीज़, मुमताज़, ये वही लफ्ज़ है। अल्लाह पाक करना चाहता है, प्रोमिनेंट करना चाहता है, सार्ट आउट करना चाहता है कि कौन खबीस है और कौन तैयब। यहाँ खबीस किसको कहा गया? मुनाफिक को। और तैयब किसको कहा गया? जिसका ईमान पाक है। ये पहली बात जहाँ तक हो गई कि अल्लाह ताला बताता है। अब देखिए, शुरू में ऐसा हो जाता था, लोग नए नए इस्लाम में जब आते थे ज़ुबान से मुसलमान हो जाते थे, लेकिन जब कोई मुश्किल आती, कोई जंग आती, तो उस वक़्त वो फितने डालते, ख़तरे डालते, तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता था। अब कैसे बताता था मुनाफिकों के हालात? इसका तज़किरा आयत के अगले हिस्से में कि वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब, अल्लाह हर एक को गैब नहीं बताता, किसी को नहीं बताता, अल्लाह तुम्हें गैब नहीं बताएगा, लेकिन वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुल ही में यशा, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है उसको चुन लेता है। किस बात के लिए? गैब के बताने के लिए। होता क्या था कि नबी सल्लम के दौर में चूंकि वही का सिलसिला जारी था, तो वही का आना जो था ना, वो बाज़ दफ़ा मुनाफिकों पर बड़ा बोझल होता था। वो ये सोच लेते थे हमारा कोई पोल खुलेगा। सूरह तौबा में आता है कि मुनाफिकीन इस बात से डरते हैं कि मुसलमानों के ऊपर कोई सूरत नाजिल ना हो जाए। सूरह मोहम्मद में ये मज़मून आता है। अब जब कभी अल्लाह के नबी सल्लम पे वही की कैफियत आती थी ना, तो वो लम्हे मुनाफिकों पे बड़े बोझल होते थे। वो ऐसे ही डर रहे होते थे, कांप रहे होते थे, एक दूसरे की तरफ कनखियों से देख रहे होते थे कि देखना अल्लाह अपने नबी को अब हमारी बातें बताएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको डाइल्यूट करके देख लें कि फॉर एग्जाम्पल एक शख्स गुनाहों में बहुत मुलव्वस है और वो किसी दीनी महफिल में बैठ जाता है। अब वहाँ बात करने में दीन की बात कुरान में हर मौजू आता है, जूँ ही कोई ऐसी आयत आती है ना कि जिसका उनके अपने अमल पे चोट पड़ती है तो वो फिर परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त नहीं होती ना। तो आज के दौर में कुरान सुनने के लिए बैठना वही कैफियत है जो उस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से गैब के ज़ाहिर होने में थी। तो अल्लाह कह रहे हैं कि नबी को गैब नहीं पता, हाँ मैं बताता हूँ। इससे क्या पता चलता है कि आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। नबियों को गैब कितना मिलता है और कब मिलता है, जब अल्लाह ताला देता है और जितना देता है। सूरह यूसुफ में हम पढ़ेंगे हज़रत याकूब को 40 साल तक पता ही नहीं चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ मील के फासले पे हैं मिस्र में, लेकिन जब अल्लाह ने इत्तला देनी चाहिए तो दूर से उनके कुर्ते के आते देख के कहने लगे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गैब नहीं पता था, सिर्फ उन मामला का पता होता था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होते थे अल्लाह के हुक्म से। हज़रत आयशा पे तोहमत लगी, 1 महीना पूरा इंतशार रहा, आप दुखी भी रहे, कुर्ते जलते रहे, नहीं पता था किसने किया। एक मौके पे हज़रत आयशा का हार खो गया, सारे लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं हुआ चलो भी चलते हैं, जब उठे तो उसी उठनी के नीचे पड़ा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बता दी कि गैब के ख़जाने अल्लाह के हाथ में है। किसी को भी गैब देने की जो बातें होती है ना, एक तो ये होती है कि उसका ज़ाती इल्म हो और दूसरा उसको हर चीज़ का हो। नबियों को जो इल्म मिलता है ना वो ज़ाती नहीं होता, अल्लाह देता है। और दूसरी बात यह है कि माजी हाल मुस्तकबिल का हर इल्म नहीं होता नबियों को, बल्कि अल्लाह ताला जितना देता है उतना ही देता है। फिर कहा करने का काम क्या है, फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये है निजात का रास्ता, बस तुम अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान ले आओ, इससे ज़्यादा ना सोचा करो। नबी गैब जानते हैं कि नहीं, जंगें क्यों होती हैं, ये सच्चे नबी हैं कि नहीं, झूठे हैं कि नहीं, इन सब को छोड़ो, तुम सीधा सीधा ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पे, फ़ायदा क्या होगा। वइन तुमिनू व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम, तुम अगर ईमान लाने के बाद तकवा इख्तियार कर लोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा अजर है। दो रास्ते बता दिए अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम को पाने के, ईमान और तकवा। खुलासा क्या है, हर बंदे की एक लिमिट होती है, उसमें रहे, उसके आगे ना सोचे ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करे, और जो मामलात है वो उसको आगे डाल दे। अब इसके बाद आयत नंबर 180 से लेकर 186 तक, वैसे तो लेकिन हमारा लेसन चूंकि 185 तक है तो उस तक हम बात करके फिर आगे भी चलेंगे। यहाँ अब अल्लाह सुबहाना ताला ने फिर कुछ गुस्ताखियों का तذکرہ किया है। बीच में वही बात, अमल की बातें, नसीहत की बातें, मौत और ज़िंदगी के असरार भी सिखाए, लेकिन असल में इन आयतों को पढ़ते हुए मेरा तो दिल इतना डरता है क्योंकि इसमें कुछ लोगों की इंतहाई गुस्ताखाना बातों को अल्लाह ताला ने डिस्कस किया है। देखते हैं साथ साथ आयत 180 को। वला यखसबन अल्लजीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही हुवा खैरल्लहुम, जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से कुछ दे रखा है वो इसमें कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल ना करें, बल्कि वो इनके लिए नहायत बदतर है। अन करीब क़्यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज़ के तौक गले में डाले जाएंगे। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की मीरास अल्लाह ही के लिए है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह उस बात से बाखबर है जो तुम कर रहे हो। कैसे ही ये बातें हुई, लक़द समे अल्लाहु कौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया, बेशक अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला फ़कीर है और हम दौलतमंद हैं। सनक्तुबु मा क़ालू, अन करीब हम लिख लेंगे जो इन्होंने कहा, और सिर्फ यही इनका जुर्म नहीं था बल्कि वक़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़, इनका नबियों को नाहक कत्ल करना भी हमें याद है। और वनकूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, और हम कहेंगे कि चखो जलने का अज़ाब। क्यों भाई, इसलिए कि ज़ालिका बिमा क़द्दमत अय्दीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, ये इसलिए कि जो इन्होंने अपने हाथों से आगे भेजा और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। इन तीन आयात के पीछे एक वाक़या है, और वाक़या क्या है खुलासा ही उसका बताऊंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात और सदकात के अहकामात बताए, لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے حکم سے زکوٰۃ دی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ اس پرچے پہ وہ آیت لکھ کے بھیجی گئی تھی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ جب یہ عمال یہود کے پاس پہنچے تو یہود میں سے کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے اچھا نعوذ باللہ، اب تمہارا رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، تبھی تو وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے اور ہم مالدار ہیں. اب یہ بات سن کے جس کے دل میں بھی تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا کیا وہ خاموش رہ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں رہ سکتا. نتیجہ کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق جنہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے اس شخص فخاس، اس کا نام آتا ہے، ایک یہودی تھا، فخاس، فخا الف سواد کے نام سے فخاس اس کا نام تھا، آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا. اب یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، ابو بکر نے وہاں یہ بات کی تھی، اب جس کو یہ تھپڑ پڑا وہ آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر کی شکایت لگانے کے لیے کہ دیکھیں آپ کے دوست تو کیسے ہو گئے اور کتنے یہ مطلب حد سے بڑھ گئے کہ انہوں نے مجھے مارا. پوچھا بھائی تم نے کیا کیا تھا؟ تو مکر گیا. ابو بکر صدیق کو بلایا گیا کہ بھائی آپ کیوں جذباتی ہو گئے اور آپ لوگوں کو اس طرح سے کیوں مارنے لگے؟ تو ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر پورا واقعہ سنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانی تھی. اب یہ بات سن کے اللہ کے نبی کو بھی غصہ آنا تھا، اللہ پہ بات کی تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بلایا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تو مکر گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے تو نہیں کہا. اور مکر جانا تو بڑا آسان ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ابو بکر صدیق کے پاس اپنی سچائی پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی صدیق کی صدیقیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ لوگ جو گستاخ ہو جاتے ہیں نا، جو بے ادب ہو جاتے ہیں، جو نبیوں کو قتل کرنے لگ جاتے ہیں، جو نبیوں پہ الزامات لگانے لگتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ پر بھی باتیں کرنے لگتے ہیں. اور یہاں اصل میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی جب جھجک کھلتی ہے نا، تو وہ اللہ کے اوپر بھی بات کرنے سے نہیں چوکتا. اور یہ واقعہ جو میں نے بتایا، یہ بہت ساری تفاسیر سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہمیں مل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے پھر حضرت ابو بکر صدیق کو بے گناہ ثابت کیا، اور فخاس جو تھا اس کی تردید کی. اب ذرا اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں، ولا یحسبن، اور مت سوچے، ہنسی بس یہ لفظ ہوتا ہے گمان کرنا یا سوچنا، مراد یہ ہے کہ نہ سمجھے. کون؟ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اشارہ ہے یہود کی طرف. لیکن یہاں بخل کو دیکھتے ہیں کہ بخل کس کو کہتے ہیں، پیچھے بھی گزر گئی یہ بات لیکن دہراتے ہیں، اس چیز کا روک لینا جس کو ادا کرنا واجب ہو، اسے بخل کہتے ہیں. بخل کیا ہے؟ جس کو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو نہ کرنا. جیسے زکوٰۃ فرائض ہے نا، اب زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، جب اس کو بندہ نہ دے تو وہ بخل کر رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر پھر شخ کا درجہ آ جاتا ہے. شخ کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے ذمہ خرچ کرنا جو واجب تھا وہ بھی نہ ادا کرے. یعنی بخل کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں نہ دے، اور شخ کیا ہے؟ کہ اپنے کھانے پینے پہ بھی خرچ نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہ شخ اور ایمان کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اور اسی پہ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہمیں ملتی ہے نسائی میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال عطا فرمایا، پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لٹک جائے گا چین کی طرح. پھر وہ اس شخص کی باچھے، یعنی یہ جو جبڑے ہوتے ہیں نا، جوز، باچھے پکڑے گا اور کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. گو کہ زکوٰۃ کا تفصیلی بیان تو سورۃ توبہ میں آئے گا، لیکن یہ آیت ہر اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے جو ابھی تک زکوٰۃ کے معاملے میں سنجیدہ نہیں. کیونکہ اللہ نے یہاں یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلی کی بات کی، کہ جو اپنے مال میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ کیسے ہوں گے. اب جس طرح اسلام میں زکوٰۃ صدقات کا نظام ہے، یہود کے ساتھ بھی تھا، لیکن یہود جو تھے وہ مال کی محبت میں بڑے حریص تھے، صدقات کی بجائے سود کا نظام رائج کر دیا. جب ایسا معاملہ کمائی میں آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کہ فرائض بھی چھٹتے ہیں. مثلا شروع میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ مال اس لیے کمانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ صدقہ دیں گے، हम इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं कि मस्जिदों को चंदे भी तो देते हैं ना। अगर हमने ये हराम काम छोड़ दिया तो फिर मस्जिदें कैसे चलेंगी। चलो ठीक है ठीक है। जितना बंदा हराम माल में पड़ता है ना, उसका लामुहाला नतीजा क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत खर्च अल्लाह के रास्ते में वो करता भी था ना, वो भी उनके लिए देना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ यही बात बताई। अब देखिए कि इस्लाम बुखल, यहाँ बुखल को असल में उर्दू में कंजूसी कहते हैं। इस्लाम बुखल किसको कहता है कि बंदा अल्लाह के रास्ते में ना दे। आज हमारे यहाँ कंजूस किसको कहते हैं, जो ज़रा बढ़ चढ़ के शादी ना करे, जो कपड़े ज़रा हिसाब किताब के ही पहन ले। अमूमन देखिए हमारे यहाँ, बिल्कुल इस क्लासरूम के बाहर अपनी सोच को ले जाएं, अमूमन कंजूस किसको कहते हैं। आप किसी को देखे शादी कर रहा है और बिल्कुल वहाँ एक साल लंक रोटी रखी तो कहते हैं कंजूसी है। हाँ मियाँ की जॉब तो बड़ी अच्छी है, फिर भी शादी सादगी से कर दी। और देखो भाई, बच्चों को नहीं देना था और क्या करना था, और खाना भी खिलाया तो कितना ख़राब खाना खिलाया। यानी अमूमन हमारा मेयार बिल्कुल फ़र्क है। कपड़े किसी के देख ले, फिर कमेंट्स कैसे होते हैं, ये तो 2,000 का लगता है, ये तो 5 का भी है, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। इस तरह की बातें कर करके लोगों को फिर इतना हरासा कर देते हैं कि बेचारे फिर फ़राइज़ अदा करें ना करें, लेकिन बच्चों की शादियों पे लाखों लगाना चाहते हैं। हमारी शादियों पे जो खर्च होता है ना, उसमें 80% जो है वो सिर्फ इस खौफ से लगता है कि लोग हमें बातें ना करें। कुछ दिल का शौक होगा, कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं, लेकिन मैंने देखा है लोग सूली पे अटके होते हैं, लेकिन चीज़ें पूरी करनी है इसलिए कि लोग बातें ना करें। असल बकील वो है कि जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ माल है और वो अल्लाह के रास्ते में ना लगाए। मैं ये बात कर रही हूँ, सबसे पहले मुझे ही अपना जायजा लेना है, और आप भी ले रहे हैं तो आपको भी करना होगा कि मेरे पास अगर कोई माल हो और मेरे लोगों में कोई ऐसे गरीब हैं, मेरे ही करीब के लोगों में या दूर के लोगों में या मुसलमानों में या इस्लाम को कहीं ज़रूरत है, क्या मैं अपने उस माल को अपने पास रोक के रखती हूँ। हम सिर्फ अपने एसेट्स का अंदाज़ा लगा लेना तो हम अपना आप खोल के देख सकते हैं। हर बंदा अपने माल के जमा करने की रफ्तार से अपने ईमान की रफ्तार चेक कर सकता है। देखिए माल के दो ही काम हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, माल के दो ही फायदे हैं, या वो आपकी ज़रूरत पूरी करे या किसी दूसरे की ज़रूरत पूरी करे, दैट्स इट। वो दूसरा अल्लाह का दीन भी हो सकता है और वो दूसरा अल्लाह का कोई गरीब बंदा भी हो सकता है, वो कोई मकरूज भी हो सकता है, कोई किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने माल को अगर मटकों में डाल के दबाया हुआ है, या हमने उसको सिर्फ ऐसे इसलिए रखा हुआ है कि चलो बुढ़ापे में काम आएगा, तो वो जमा करने वाले के ऊपर वबाल है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे इस बात को समझना और समझाना। अब यहाँ इनके बुखल की बात करके फरमाया कि बल हुआ शर्रुल्लहुम, ये माल उनके हक में बड़ा बुरा है। सयुतवक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, ये अनकरीब उसी माल के ये तौक पहनाए जाएंगे। वही इशारा है जो हदीस में गुजर गया। इसी तरह जो ज़मीन रोक लेता है, हदीस में आता है कि जिसने किसी की कोई नजायज़ तरीके से ज़मीन का टुकड़ा अगर हासिल कर लिया, मसलन आपके घर की इतनी बाउंड्री थी तो आपने एक गज़ ज़मीन नेबर की भी ले ली, उसको नहीं पता चला, भोला था, जो सो ऑन क़यामत के दिन उस एक गज़ ज़मीन के नीचे की 7 ज़मीनों की 7 कड़ियाँ मिला के उस बंदे के गले में वो ज़मीनें लटकाई जाएंगी। बड़ा शौक होता है ना हमें प्रॉपर्टीज़ को देखने का, क़यामत के दिन वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे गले में हार की तरह लटकाई जाएंगी अगर हमने उस पर ज़कात ना दी। ठीक है कोई ज़कात दे दे, गुनाह नहीं, मना नहीं, या फिर कह दूँ कैसा ना हो कि लोग परेशान हो जाएँ, मना नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह का हक छोड़ के दुनिया के मामला को लेते रहे तो ये बात जो है दुरुस्त नहीं। फिर अल्लाह ताला ने इसी ज़िमन में एक बात कह दी, क्या कि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के पास तो ज़मीन व आसमान की मीरास है, उसको क्या ज़रूरत है तुम्हारा माल लेने की। ये तुम कहते हो अल्लाह फ़कीर हो गया या अल्लाह हमसे मांगता है, वो तो सब कुछ कर रहा है, सब तुम्हें दे रहा है, तुम्हें दिए हुए में से ही अपनी मांगता है, तो लिहाजा तुम उस पर शक ना करो, क्योंकि वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह को खूब पता है कि जो तुम कर रहे हो। इसी से देखिए अल्लाह ताला ने ये बात बता दी कि कोई छुप के भी कोई काम करता है, किसी दूसरे बंदे को कानो कान भी उसकी खबर नहीं होती, तो फिर भी अल्लाह ताला उसके इस मामले को खोल के रख देता है। अब इनकी मज़ीद बात जिसके ऊपर ये पूरी बात हुई, अल्लाह ताला उसको कोट करें, और मुझे सबसे मुश्किल आयत पढ़नी लगती है जब मैं सादा तिलावत से कुरान पढ़ूँ। जब भी मैं कुरान पाक की आयतों से गुजरती हूँ, मुझे ये आयत पढ़नी ऐसे लगता है कि जैसे मेरे कंधों पे कोई मन मन का बोझ रख रहा है। लेकिन वही बात है कि नकले कुफर कुफर नबाशित, अल्लाह ने जब इनका इतना गुस्ताखाना कौल कुरान पाक में डाल दिया तो फिर हमें भी इसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या कि लक़द समे अल्लाहु कौलल्लज़ीना क़ालू, बेशक सुन ली अल्लाह ने बात उन लोगों की जिन्होंने कहा। कौन थे ये लोग? फ़ख़्ख़ास, यहूद का आलिम था बड़ा, क्या कहा, ये इन्वर्टेड कॉमास में आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये उसका जुमला था, इन्ना अल्लाह फ़कीरुन व नहनु अग्निया, बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। किसी बंदे के दिल में अगर ईमान की थोड़ी सी भी रमक होगी ना, तो वो ऐसे नहीं बोल सकता। देखिए, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब, बड़ों का तो मजाक मजाक में भी नहीं उड़ाया जा सकता, कहाँ बड़ों का बड़ा, सबसे बड़ा अल्लाह अकबर, उसका मजाक उड़ाना। ये जुरत कब होती है? ये एकदम नहीं होती। पहले बंदा गुनाहों पे दलेर होता है, फिर बंदा उन गुनाहों को नेकियां साबित करना चाहता है, फिर अल्लाह ताला अपने बंदा अपने गुनाहों को जस्टिफाई करता है, और होते होते झिझक इतनी खुल जाती है कि अल्लाह पे भी बातें करने लगता है। क्या आज के दौर में तो नहीं कोई बात करता अल्लाह पे? कुछ बहुत सारे करते हैं। मुश्किल पड़ती है तो अल्लाह को ब्लेम करते हैं, कोई आजमाइश आती है तो मैंने जोक्स में देखे लोग अल्लाह ताला का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और बाद में तौबा तौबा भी कर देंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन्होंने ये बात कही, अल्लाह ने सुन ली है, समी अल्लाह। इससे पता क्या चला? पहली बात कि अल्लाह सुनता है क्योंकि वो असमी है। दूसरी बात, जब कोई कहता है अल्लाह फौरन सुन लेता है, उसको फौरन सुनना आता है, वो ये नहीं कि उसको थोड़ी देर लगती है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, नहीं, सुन लेता है। फिर उसके बाद अगली बात देखिए कि अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि सनक तुबु, हम अन करीब लिखेंगे, उनकी बात के जवाब में उनको सजा क्या मिलनी है ये नहीं लिखा भी, ये कहा सनक तुबु मा कालू, हम अन करीब लिख लेंगे जो उन्होंने कहा है। यानी अल्लाह को उन पर इतना गुस्सा है कि उनकी बात दोहराने की बजाय, उसकी सजा बताने की बजाय, ये कह दिया बस जो इन्होंने कहा है एज इट इज़ फरिश्तों, इसको लिख दो। अभी नहीं लिखा, लिखेंगे। अनकरीब का लफ्ज़ क्यों बोला? मुफसरीन कहते हैं कि इसमें अल्लाह का रहम है। ये भी तो कहा जा सकता है ना कि कतब अल्लाह, लिख ली अल्लाह ने बात, कल मैदान महशर में अपने नामे अमाल में अपना ये जुमला लिखा हुआ पाओगे। देखिए, लिखी हुई बात को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। आज इन्होंने ये कुफर का जुमला बोला, अल्लाह ने सुन लिया, सजा दे सकता था ना इसके खिलाफ, इस एक आयत के बदले में हो सकता है जहन्नुम की 10 वईदें लिखी जाती, कुछ भी नहीं। देखिए अल्लाह का तहम्मुल, अल्लाह का हौसला, सनक तुबु मा कालू, बस बात आ गई, वक़्त लहुमल, दूसरी बात की तरफ इशारा कर दिया। क्यों? कि जब बंदे को किसी पे थोड़ा गुस्सा होता है ना, तो बंदा उसका इजहार कर लेता है, लेकिन जब किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ना, तो बंदा फिर गुस्से का इजहार भी नहीं करता, चुप हो जाता है। मतलब माँ है ना, उसको बच्चे पे थोड़ा सा गुस्सा होता है, खूब बोलती बालती डांटती गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो एक चुप साध लेती हैं। यही मामला दूसरे रिश्तों में भी होता है। अल्लाह को इनका ये जुमला इतना नागवार गुजरा, हद से गिरा हुआ गुजरा, कि अल्लाह कहते हैं मैं कुछ नहीं कहता, बस मैंने लिख लिया, कल पूछोगे। और मैंने इस आयत को जब पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत इसमें अदब सिखा दिया लोगों के शऊर को बेदार करने का। और वो क्या? तुमने जो कहा है ना, उसने सुन लिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, अल्लाह को पता है तुम जो भी करोगे, तुम जो कहोगे ये अल्लाह के ऊपर है। ये वो चीज़ होती है जो अगले को बेदार कर देती है। हम समझते हैं हम अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे, हम सच्चे हो जाएंगे, कस्में खाएंगे, रोएंगे धोएंगे, तो अगला हमारी बात मान लेगा? नहीं होता, हमारी जुबानों में वो ताकत ही नहीं। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह मरियम में, हज़रत मरियम बच्चे को लेके आ रही थी, कुंवारी लड़की एक नौमलूद बच्चा लेके बिरादरी में आ रही है, तो अल्लाह ताला उनको क्या सिखा रहे हैं, क्या कहना मरियम? इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा। भाई ये बच्चा कहाँ से आया, ये किसका, ये क्या है, क्या है, वो बोलते रहे, पूछ रहे क्या हुआ, हारून की बहन, फुलां की बेटी, तुमने ये क्या पाप किया? तो मरियम आगे से कह रही है कि इन्नी नज़रतु लकमा, यानी मैं अल्लाह के लिए रोज़ा रखती हूँ। ये चुप का रोज़ा होता था कि मरियम एक लफ्ज़ ना बोलना, क्योंकि तेरे बोलने से ये मानेंगे थोड़ी। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने इनकी बात को आखरत के पल्लड़े में डाल दिया। किसी की बात मैंने सुनी, कहने लगी कि एक मौके पर उन्होंने कोई दर्स दिया होगा या कुछ ऐसी बात हुई होगी, तो बात में कोई ऐसा मामला होगा, वल्लाहु आलम, जैसी भी, पूरी बात तो मुझे अभी उनकी याद नहीं है, तो कहने लगी कि मेरे पास कोई आई तो मुझे कहने लगी कि आप मुनाफिक हैं या आपने जो बात पेश की वो गलत है। अब सुन के आप सोचे, जरा 25-50 नए लोग बैठे हैं और उसमें एक बंदा आके आपको मुंह पे कह दे जी आप झूठ बोल रही हैं या आप मुनाफिक है, क्या फीलिंग हो सकती है? अब एक तो जवाब है कि उसके जवाब में लड़ाई शुरू हो जाए, बातें शुरू करें, तो वो कहती है मैंने उनको कहा जो आपने कहा है अल्लाह ने सुन लिया और मेरा मामला अल्लाह पे है। कहती जब मैंने उनको ये बात कही ना तो उनका रंग उड़ गया। आप भी ये किया करें, अल्लाह ना करे कभी कोई आपके ऊपर कोई दीन की वजह से बात करे कि आप बड़े दीनदार हो गए, आप बड़े मौलवी हो गए, आप ऐसे आप वैसे, आप दुनिया में फितना फैला रहे। मिसाल है ना, दुनिया में लोगों ने आजकल यही तो सोचा हुआ है कि जितने दीनदार हैं बस वो अमने आमा में खराबी पैदा कर रहे हैं और दुनियादार बड़े असिमिलेटेड है। खामोश रहें, प्यार से नरमी से कहते अल्लाह ने सुन लिया है मेरा मामला अल्लाह पे है, बस फिर आप अपना काम लग जाएं। अल्लाह ने इनके इस जुर्म में इनका दूसरा जुर्म बताया, अल्लाह ताला के ऊपर ये बातें करने वाले इनकी तो झिझक कितनी बढ़ चुकी कि वक़तलहुम अल-अंबिया बग़ैरी हक़्क़िन, इनका तो ये भी जुर्म अभी याद है कि इन्होंने नबियों की तकज़ीब की, उनका मजाक ही नहीं उड़ाया, उनको कत्ल कर दिया। तो जो लोग अल्लाह के नबी की तकज़ीब और इस्तेहज़ा कर सके, क्या अगर कल वो अल्लाह की ज़ात पे कोई बात कर देंगे तो क्या बड़ी बात हो गई। बस वनक़ूलु ज़ूक़ अज़ाबल हरीक, हम इनको कह देंगे अजाब हरीक को चख लो, हरका से है जलने वाला अजाब चख लो, क्यामत के दिन इनको इनके इन गुनाहों के बदले में आग में डाला जाएगा। क्योंकि ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिलअबीद, ये इस वजह से हुआ कि जो इन्होंने आगे भेजा। ये बिमा क़द्दमत अयदीकुम क्या है? इसी आयत के नाते से पहली बात इनका ये कौल कि अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह फ़कीर है, और दूसरा क़त्लहुमुल अम्बिया कि इनको जहन्नुम की जो सज़ा मिलेगी कोई अल्लाह ताला की तरफ से सख्ती की वजह से नहीं मिलेगी बल्कि इनके ही गुनाहों की वजह से। इसके बाद आयत 183 में अब यहूद के एक तीसरे जुर्म की तरफ इशारा है, इसको भी पढ़ते हैं और ताल्लुक़ इसका पीछे आयत से ही है। फरमाया अल्लसीना, कौन लोग? यहूद। कालू, इन्होंने कहा इन्नल्लाहा अहिदा इलैना, बेशक अल्लाह ने हमसे वादा लिया है। आहिदा के बाद इला आ गया ना, तो वादा लिया यानी कमिट किया अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने हमें ये कह दिया क्या अल्लाह नो मिन अली रसूलिन हत्ता यातिया ना बी कुर्बानिन ताकुलुहुन नार, कि हम हरगिज़ ना ईमान लाएं किसी रसूल पर यहाँ तक के ले आए वो एक कुर्बानी को, ताकुलुहुन नार, जिसको आग खा ले। यहाँ यहूद का एक और ढकोसला है, वो क्या था कि जब इनको कहा जाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आओ, देखो सच्चे नबी हैं, ये वही हैं जिनकी तुम दुआएं मांग रहे थे, तो इन्होंने एक झूठ घड़ा, एक इफ्तराबाजी की, एक तहरीफ की अपनी किताबों के नाते से। और वो क्या थी, कहने लगे नहीं नहीं हमारा दिल तो बड़ा चाहता है कि इस नबी को मान लें, लेकिन एक मसला है। भाई मसला क्या है? वो ये है कि तौरात में ये कहा गया है कि जब तक रसूल तुम्हारे सामने एक कुर्बानी करे और वो कुर्बानी आसमान से आई हुई आग के स्पुर्द ना हो जाए यानी आग उसको ना खा ले, तब तक तुम उसको रसूल ना मानना। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात समझ लें कि जब इब्तदाई दौर था ना इंसानियत का, मसला आगे आप पढ़ेंगे सूरत मायदा में हाबील और काबील का किस्सा कि दोनों ने कुर्बानी की, फिर एक की कुर्बानी कबूल हुई दूसरे की ना हुई। जब इब्तदाई दौर था और ख़ास तौर पर बनी इसराइल के जो अंबिया कराम थे, तो उस दौर में ऐसा होता था कि जब कोई अल्लाह के नाम पे कुर्बानी करता, कोई बकरा, कोई कुर्बानी ज़िबा, तो उसको खुले आसमान के नीचे छोड़ देते। अब होता क्या कि आसमान जिसकी कबूल होनी होती, जिसकी नीयत अच्छी थी, जिसकी कमाई अच्छी थी, आसमान से आग आती और वो पूरा बकरा गायब हो जाता, तो ये इस बात की निशानी होती थी कि अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। और जिसकी नीयत में खोट होता या ख़राबी होती, वो वहीं गली सड़ती रहती, लोगों में भी बदनामी हो जाती कि भाई इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब शुरू में ये होता था, लेकिन आज के दौर में तो आपको पता है कि कुर्बानी का गोश्त खुद भी हम खाते हैं और बाज़ दफ़ा सदकात जो होते हैं वो गरीबों को खिलाए जाते हैं। ये एक वक्ती हुक्म था। आप कहेंगे वो क्यों था और आज क्यों नहीं, इसकी एक हिकमत है। वजह यह कि शुरू दौर में दुनिया में इंसान थोड़े थे, इतनी गोश्त की ज़रूरत नहीं थी। अब जब वो गोश्त अगर खाने वाले ना हों और लोग तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ करें, अल्लाह की तरफ से रग़बत दिलाई जाती है ना, तो फिर अगर कोई खाएगा नहीं, आसमान से ना आए, तो वो गलता सड़ता रहेगा। ठीक है, वक्त के साथ इंसानियत बढ़ी, लोग बढ़ गए, गरीब गुरबा बहुत है, तो अल्लाह ने हुक्म बदल दिया। अब आज मिसाल है, ये कह दिया जाए कि हर ईद कुर्बानी के ऊपर गोश्त को करके ज़िबा बकरे को तो बाहर रख दो और आसमान से एक आग आएगी ले जाएगी, तो आप सोचे वो गरीब जो साल में एक बार गोश्त खाते हैं वो भी नहीं खाएंगे ना। अब ये एक हुक्म था, ये चीज़ नॉर्मल थी, इसमें कोई नहीं। यहूद ने झूठ क्या बोल दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अब चूंकि ऐसा नहीं हो रहा, तो बस फिर हम अब नहीं मानेंगे। और बनी इसराइल के अंबिया वाकई सदकात को जब मैदान में या पहाड़ पे रखते थे तो वो चले जाते थे, तो मानते हैं, कहने के बस इस वजह से हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला देखिए हुज्जत कैसे पूरी करते हैं, हुज्जत इल्ज़ामी बोलते हैं कि कहा अच्छा ठीक है, इस नबी को आप सिर्फ इसलिए नहीं मान रहे ना कि इसकी कुर्बानी को आसमान से आग नहीं खाती, तो ज़रा ये तो बताएं। कुल कद जाकुम रुसुलुम मिन कबली, मेरे से पहले भी तो जो रसूल आए थे बिल बैयिनात, दलीलों के साथ, मोजज़ात जो सहीफे जो बातें थी, और बिल्लज़ी कुलतुम, और वो चीज़ जो तुमने कही, ये क्या है? आसमान से आग का आना और कुर्बानी के गोश्त को खाना। लिख ले इसके नीचे एरो लगाएं, बिल्लज़ी कुलतुम क्या है? यही बात के यातिया नबी कुर्बान ताकुलुहुन्नार का, जो बात तुम इस नबी को कह रहे हो, पिछले नबियों ने तो ये मोजज़ा ये काम करके दिखाया, तो फिर तुम बताओ, फलीमा कतल तुमोहम, फिर तुमने उनको क्यों कत्ल किया? यानी जिन्होंने तुम्हारे सामने ये मोजज़ा दिखा भी दिया कि उनकी कुर्बानियों को आसमान से आग ले जाती, तुमने तो उनको भी कत्ल कर दिया। इन कुन तुम सादिकीन, अगर सच्चे हो। तो बात क्या पता चली कि अगर अल्लाह का ये नबी तुम्हारे सामने ये काम करके भी दिखा देगा, तुम फिर भी नहीं मानोगे। तो लिहाजा अब नबी सल्लम को खिताब किया जा रहा है, फ़इन कज़्ज़बू का, फिर अगर ये आपको झुठला दें, फ़कद कुज़्ज़िबा रुसुलुम मिन क़ब्लिक, तो झुठलाए गए आपसे पहले के रसूल भी। अब गम ना करें, रिसालत की तो शान ही झुठलाना है। एक झुठलाया गया, दो झुठलाए गए, सब झुठलाए गए। कौन झुठलाए गए? जाओ बिल बैयिनात, दलाइल लाए थे। ये आज आपसे दलाइल मांगते हैं ना, मोजज़े मांगते हैं, वो सब आए थे, इन्होंने फिर भी झुठला दिया। वह ज़ुबुर, और सहीफ़े, ज़ुबुर जो है ये ज़ुबूर की जमा है, छोटी किताब को ज़ुबूर कहते हैं, आज की ज़ुबान में पम्फलेट्स, बुकलेट्स, छोटे छोटे सहीफ़े, ये मिलते थे पहले दौर में। फ़ी सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा का तذکرہ सूरह आला में आता है। तो जो किताब अपने दौर में इनके पास आई, इन्होंने उसको झुटलाया। वल किताबिल मुनीर, और किताब मुनीर को भी झुटला चुके। ये क्या है? तौरात। तौरात बड़ी किताब थी, उसको भी ना माना, छोटी छोटी किताबों को भी ना माना। तो बताइए कि ये फिर आज आपकी बातों को कहाँ मानेंगे? अब इनको इनके हाल पे छोड़ दो। असल बात, इनका मसला जो है ना, वो ज़िद है, इनाद है, हठ धर्मी है। ये लोग इस तरह की बातें करके आपको दुखी करते हैं, आप इनके ऊपर दुखी भी ना हो, गमजदा भी ना हो, ये रसालत की शान है। हाँ, जब बहुत गम आए तो गमों को, फिक्रों को जायल करने वाली चीज़ को याद कर लें, और वो क्या? कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। लफ्जी तर्जमा इसका क्या है? हर नफ्स मौत का जायका चखने वाली है। नफ्स अरबी में मोनस होता है, इसीलिए जायक की बजाय जायकतुन है, फाइल है ये। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। वह इन्नमा तुवफ्फौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, फिर बेशक तुम्हें पूरी की पूरी मजदूरी मिल जाएगी तुम्हारे अमाल की क़यामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहानिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, और जो कोई दोजख से दूर करके जन्नत में दाखिल किया गया तो हकीकत में वो कामयाब हो गया। रह गई ये दुनिया, इसकी हसीयत, इसके गम, इसके दुख, इसका झुटलाना, इसकी तारीफें, इसकी तकजीबें। तो वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी धोखे और गुरूर के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है कि जैसे सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, जख्मों पे फाहा लग गया। अल्लाह के नबी दुखी थे, परेशान थे, आजमाइश थी, ये ऐसी बातें क्यों करते हैं, ये क्यों कहते हैं, ये कहते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं आप इन सारी बातों को छोड़ दें। इसमें ये बता दिया कि आज अगर किसी जगह काफिरों को गलबा मिल जाए, दुनिया की ऐशो इशरत इनको मिल जाए, इसके बरक्स अगर मुसलमानों को मसाइब और आजमाइशों का शिकार होना भी पड़े, तो क्या बड़ी बात है? ये दुनिया 4 दिन की है, इसकी खुशियाँ भी झूठी, इसके गम भी झूठे। असल बात है कि गम ये करो कि मौत कैसी आएगी, वहाँ क्या होगा, वहाँ जाके क्या मामला होगा। और वहाँ जाके सिर्फ जन्नत को पाना ही असल बात नहीं है, ये आयत एक हकीकत को भी खोलती है और एक गलत फहमी का इजाला भी है। गलत फहमी क्या है, पहले उसको बताऊंगी तो हकीकत खुद ही समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वो क्या है कि चूँकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, तो हमें जन्नत ज़रूर मिलेगी। और रिवायात बहुत सारी हैं कि मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में जाएगा। फिर एक रिवायत ये भी बहुत लोगों को जमा कर देती है इस बात पे कि کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، ہے نا؟ یہ بات ہر ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ مسلمان ہیں تو جنت میں جائیں گے، لیکن یہاں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ صرف جنت میں جانا ہی گول نہیں ہے، جہنم سے بچ کر جنت میں جو جائے گا وہ ہے کامیاب۔ فاز کا لفظ جہاں ہے فوزیہ، فائزہ، کامیاب ہونے والی۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ کسی کو جہنم کے اندر گرائے بغیر جنت ملے۔ صحیح روایت سے یہ چیز ملتی ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں گرائے جائیں گے، وہاں اپنے عذابوں کو، گناہوں کو بھگتنے کے بعد پھر جب ان کی معافی ہوگی پھر جنت میں جائیں گے۔ اس کی روایات بہت ساری ملتی ہیں، کوئی پل صراط سے گزر جائے گا، کچھ پل صراط سے کٹ کے بھی جہنم میں گریں گے، لیکن جب ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، وہ کوئلے بن چکے ہوں گے۔ جنت کے باہر ایک نہر ہے، نہر حیوان، اس میں ان کو پھینکا جائے گا، ان کوئلوں سے نئے جسم اگیں گے، بالکل نئی باڈی بنے گی، پھر اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا، اور ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا اتقوا الرحمن، رحمان کے آزاد کردہ قیدی، پرزنرز آف رمضان۔ اس کو دیکھ کے لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلے جہنم میں گئے تھے، وہاں سے نکالے گئے۔ جیسے دنیا میں کوئی ایک دفعہ جیل میں رہا ہے نا خدا نخواستہ، تو اس کے نام پہ ٹھپا لگ جاتا ہے نا۔ اب اس بات سے جنتیوں کو شرم آئے گی کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم جہنم سے ہو کر آئے ہیں، جہاں گزرتے ہیں پتہ چلتا ہے، پھر جب اللہ چاہے گا کچھ عرصے کے بعد ان کے ماتھوں سے وہ بھی ہٹا دیا جائے گا۔ تو ہمارا گول کیا ہے؟ کہ جہنم کے جھونکے سہنے کے بعد، جہنم میں ڈبکیاں لگوائے جانے کے بعد جنت نہ ملے، بلکہ فمن زخزح عن النار پہلے ہے وہ ادخل الجنہ، آگ سے زخزخ، زخزخ ربائی ہے، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ زاحا زاخا، یعنی جو جہنم سے دور کر کے جنت میں ڈالا گیا، اور جہنم میں سے گزر کے جنت میں آئے تو وہ کیا ہے؟ اللہ لے آئے وہ بھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ امت محمدیہ کے فاجر، کافر، بدکار، زانی، شرابی اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اگر اللہ ان کو پکڑے گا، یہ اس کا معاملہ ہے، معاف کر دے، اس کی مرضی ہے، لیکن قانون یہ ہے، جیسے لا بک ہوتی ہے نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان بھی اگر اس کے عقیدے میں کمی ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس اللہ کی محبت یا اللہ کا دین تھا، گناہ بہت ہے، تو پہلے آگ میں جلے گا۔ اب بھگتنا ہے تو دیکھ لیں، انسان چند سیکنڈ کے لیے اسٹوو پہ انگلی رکھ کے دیکھ لیں، سمجھ آ جائے گی۔ لوگ بڑی ادا سے کہتے ہیں خیر ہے نا، کچھ دن رہ لیں گے جہنم میں، جانا تو پھر جنت میں ہی ہے۔ کوئی کہتا ہے اچھا وہاں جنت میں سردی بہت ہوگی تو ہم جہنم میں تھوڑی گرمی سہ لیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسی بدتمیزی کی باتیں کسی کی پکڑی جائے۔ میں نے خود لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ اچھا جب جہنم میں سردی لگے گی تو کوئی بات نہیں، ذرا قریب جا کے جہنم کی آگ سہ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زبانوں کو چھوٹا کر دے، ہمارے دل جھکے ہوئے ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری بات بتا دی کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو سارے غموں سے بے نیاز کرنا چاہتے ہو نا، لوگوں کی تعریف اور تنقید سے بے نیاز کرنا چاہتے ہو، تو اپنی موت کا غم لگا لو اور ما بعد الموت کا غم لگا لو کہ وہاں کیا ہوگا، اور یہی ہے خوش رہنے کا راز، یہی ہے وہ چیز جو انسان کو دنیا کے مصائب اور آزمائشوں میں ثابت قدم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بے نیاز کر دے اور ہمیں اپنی موت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے۔ سبق یہاں پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.